भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया और ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सेना लेकर के रावण पुत्र मेघनाथ के साथ युद्ध करने के लिए विभीषण के साथ जाओ। लक्ष्मण अकेले मत जाना, हनुमान को ले जाना, और भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ बानर हैं, बलवान बानर हैं, उनके साथ जाना। ये ऋक्षराज जामवंत जी आपके साथ रहेंगे, ये इनकी बुद्धि बहुत युद्ध में काम करने वाली है। विभीषण जाएंगे, वो सब रास्ता जानते हैं, और विभीषण के साथ के चारों मंत्री जाएंगे, और विभीषण तुमको जो श्रेष्ठ बंदर लगे वो सेना लेकर के चले जाओ। उस देश में कहां छिपना चाहिए, कहां खड्डे हैं, किस तरफ का रास्ता किधर जाकर खुलता है, ये सब विभीषण जानते हैं। जैसा विभीषण कहे वैसा करना। लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी के वचनों को सुना, अपना धनुष लिया और राम जी के चरणों का स्पर्श करके लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, महाराज ये आपकी कृपा से ये बाण आज मेरे हाथ से छूट करके रावण पुत्र मेघनाथ के छाती में लगेंगे और फिर जो है गमिष्यन्ति पातालम, फिर ये पाताल में जाएंगे और पाताल के अंदर जाकर के मेघनाथ के खून से मैले हुए बाण पाताल की जो गंगा है भोगवती जो कहलाती है उसमें जाकर शुद्ध होकर के वापिस आपके पास आ जाएंगे। भगवान बड़े खुश हुए। देखो लक्ष्मण जी की एक ही उक्ति कितनी काम आई। ये जो मेरे बाण है ये बाण मेघनाथ के छाती में लगने से उसके खून से दूषित हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। अब मैं कहां धोऊंगा यहां, तो ये सीधे वहां पाताल में चले जाएंगे और वहां जाकर धूप धुपा करके वापस मेरे पास आ जाएंगे। राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, लक्ष्मण जी को आशीर्वाद मिला और लक्ष्मण जी वहां से विभीषण आदि के साथ में और हजारों बंदरों के साथ में रवाना हो गए। हनुमान जी उनके साथ बराबर, विभीषण जी भी साथ में, उनके मंत्री भी साथ में, जामवंत जी भी साथ में, बड़े जल्दी जल्दी रवाना हुए और चलते चलते वो निकुम्बिला क्षेत्र में आ ही गए। निकुम्बिला क्षेत्र में जो ही लक्ष्मण जी बंदरों के साथ प्रवेश करते हैं तो यहां देखा है कि बहुत बड़ी सेना चारों तरफ तैनात की हुई है। निकुम्बिला क्षेत्र चारों तरफ सेना, और सेना यूं ही नहीं है, व्यूहाकार सेना है। किधर से भी जाओ सेना में सीधा प्रवेश हो नहीं सकता है, इतनी बड़ी सेना देखी। लेकिन इतना होते हुए भी लक्ष्मण जी के हृदय में लेश मात्र भी कोई भय पैदा नहीं हुआ, कोई कंपन पैदा नहीं हुआ। अंगद जी भी उनके साथ में है, जामवंत जी भी साथ में है। विभीषण ने कहा, लक्ष्मण इन राक्षसों को देखो, ये राक्षसों की सेना बड़े पैंतरे के साथ खड़ी है, मोर्चा लिए हुए खड़ी है। देखो काले काले मेघ घटा के समान ये राक्षसी सेना कैसी है, इनमें से एक हिस्से को तो तोड़ करके जबरदस्ती घुसना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो तस्य अस्य अनिकस्य महतो भेदे न यत्नवान भव, कोई ऐसा उपाय करो कि एक तरफ की सेना सब खत्म हो जाए और एक साथ हम अंदर चले जाए सब के सब। अंदर चले जाने के बाद तो फिर काम हो जाएगा। इधर वो राक्षसेंद्र पुत्र मेघनाथ इस देश के अंदर अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, हम एक साथ अंदर घुसेंगे और वहां जाकर कोहराम मचाएंगे और उसके यज्ञ को नष्ट करेंगे, तब वो दृश्य होगा। ऐसे दृश्य नहीं होगा, वो छिपा रहेगा अंदर। लक्ष्मण जल्दी करें, अपने इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। वो हिंसा की तरफ लगा हुआ राक्षस परम अधार्मिक है, इसलिए कोई विचार मत करो, एक साथ आक्रमण कर दो। विभीषण जी ने ये वचन कहे तो लक्ष्मण जी ने शुभ समय के अंदर फिर वहां खूब बाणों की एक साथ बरसात कर दी। बंदरों को भी कह दिया कि तुम पर्वत शिखर लाला करके सेना में डालते जाओ। एक तरफ की सेना को बुरी तरह से उन्होंने नष्ट करना चालू किया और देखते ही देखते राक्षसों की सेना धराशायी हो गई। उनके शस्त्र थे, उन्हीं शस्त्रों से बंदरों ने उनको मारना चालू किया, तब बड़ा भारी शब्द करके अंदर घुस गए वो। अब निकुमुला क्षेत्र के अंदर घुस गए तो वहां पर होम सामग्रियां वगैरह देखी, तो उन बंदरों ने सब होम सामग्री कोई किधर फेंक दी, कोई किधर फेंक दी, कोई किधर फेंक दी, और जो होम करने की जगह थी उस जगह को जाकर के उन्होंने जो है दूषित पदार्थ डाल करके उस यज्ञ को वहीं पर खत्म कर दिया। तब वो मेघनाथ बड़ा क्रोध में भर करके रथ पर बैठ करके लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए उस क्षेत्र से आया, बाहर आया। सौमित्रे मेघनादो हम मया जीवन न मोक्ष से, अरे मेघनाथ, अरे अरे लक्ष्मण, मेघनाथ के जीवित रहते हुए अब तू जीवित नहीं रह सकता, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, तू निकुमला क्षेत्र में आया है, ओ तेरी हिम्मत नहीं है, ये मेरे चाचा की करतूत है। विभीषण, लंका में तुम पैदा हुए, लंका में बड़े हुए, लंका के कारण से तुम प्रसिद्ध हुए, और तुम लंका के ही राजा के भाई हो ऐसा समझकर अपना काम बनाने के लिए राम ने तुमको अपना मंत्री पद दिया, और उसी लंका की आज तुम जो है लंका के विनाश की बात सोचते हो, अपने आत्मी लोगों को छोड़ करके तुम शत्रु सेना के अंदर जाकर मिल गए, कथम द्रुयसी पुत्राय, और मैं तो तुम्हारा बेटा ही हूं, भतीजा तो बेटा ही होता है, मैं तुम्हारा बेटा हूं, पापियान असी, तुम महान पापी हो, पापी, तुम्हारे इस पाप के कारण हमारी लंका के अंदर कष्ट पैदा हुआ, तो अब हम तुमको छोड़ने वाले नहीं है। इत्युक्त्वा, पहले तो फिर ऐसा कहकर लक्ष्मण जी पर प्रहार किया। इतने में ही हनुमान जी आए, हनुमान जी ने कहा कि महाराज आप मेरे पीठ पर बैठिए, ये रथ पर बैठा हुआ बाण लगाएगा ऊपर से ही बाण जो है सुगम रहेगा, और सीधा बाण लगाना इसके लिए कठिन रहेगा, और मैं महाराज रथ होता तो अलग बात थी, मैं तो छोटा भी हो जाऊं बड़ा भी हो जाऊं आपको बाणों से बचाता रहूंगा। तो पीठ के ऊपर लक्ष्मण जी को चढ़ा दिया। अब वो आपस में खूब बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। महाप्रमाण उद्यम्य घोरम विस्फारयन धनु, वो बोलता है कि बानरों के खून मेरे बाण पी जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज ये राक्षसी सेना नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों का वाग युद्ध भी चला और जो है बाण युद्ध भी चला, बाणी युद्ध और बाण युद्ध दोनों युद्ध होने लगा। लाल आंखें निकाला हुआ मेघनाद लक्ष्मण को देख करके अपने ऐसे ऐसे बाण मारता है, और फिर लक्ष्मण के बाण वापिस आकर उसके लगते हैं तो वो बेहोश होता है, और फिर दशरथ पुत्र लक्ष्मण के ऊपर ऐसे बाण डालता है तो लक्ष्मण जी भी कई बार चक्कर खाने लगते हैं। ऐसे करते घमासान दोनों का युद्ध होने लगा। इस युद्ध में मेघनाथ कहता है, अरे लक्ष्मण तू मेरे साथ पहले युद्ध में आया नहीं। लक्ष्मण से बोलता है मेघनाथ कि लक्ष्मण तू पहले मेरे साथ युद्ध में आया नहीं, अब मैं तुझे अपना पूरा पराक्रम दिखाता हूं। 7 बाण लक्ष्मण जी पर लगाए, 10 बाण उन्होंने हनुमान जी पर छोड़े, और दूसरे तीक्ष्ण बाण उन्होंने सैकड़ों बाण और भी उनके ऊपर छोड़े। विभीषण के ऊपर क्या बताए, इतना क्रोध आया कि वो विभीषण पर बाण पर बाण छोड़ता ही चला गया। लक्ष्मण जी ने भी देखा कि ये इस प्रकार से अपना पराक्रम दिखाता है, हम पीछे क्यों रहे। तो विभीषण जी ने अपना बाण चलाया तो उसका सब कवच उतार दिया, उसका रथ था रथ का नष्ट कर दिया, घोड़े उसके एकदम नष्ट हो गए, और फिर उस रावण ने भी कई बाण लगा करके लक्ष्मण जी के भी कवच को तोड़ दिया। ऐसे इन दोनों में कृत और प्रतिकृत युद्ध हुआ, जैसा इसने किया वैसा ही उसने किया, और जैसे उसने ऐसा किया ऐसा इसने उसका किया, ऐसे कृत प्रतिकृत युद्ध हुआ। दोनों में खूब जो है भयंकर युद्ध हो रहा था। लंबे समय तक ये युद्ध चला, और तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण एक दूसरे पर विजय की इच्छा से चलाए जा रहे थे। आकाश में बैठे हुए देवता लोग इस युद्ध को एकदम निर्मिमेष दृष्टि आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे। सबके प्राण गले में आए हुए थे कि लक्ष्मण जी का क्या होगा। रावणे सारथिम साश्वम रथंच समचूर्णयत। रावण का जब सारथी मारा गया, घोड़े रथ सब समाप्त हो गए, वो धनुष उठाया तो धनुष को भी काट दिया, फिर उसने दूसरा धनुष उठाया तो उस धनुष को भी लक्ष्मण जी ने काट दिया। इस प्रकार से उसके उठावे वो धनुष काटे तो फिर जो है मेघनाथ को बड़ा क्रोध आया। अब उसने एक धनुष ऐसे इस ढंग से उठाया कि लक्ष्मण के बाण लगे नहीं, और फिर वो लक्ष्मण जी के ऊपर बाण छोड़ने लगा। ऐसे करते करते लक्ष्मण जी महाराज ने अब ऐन्द्रास्त्र लिया अपने, और ऐन्द्रास्त्र लेकर के उसके ऊपर चढ़ा करके और निशाना लगा करके भगवान का ध्यान किया, और मनी मन से कहता है, धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दासरथिर यदि त्रिलोक्याम प्रतिद्वंद्वस्तदेनम जहि रावणिम। ए इंद्रधनुष, दशरथ नंदन राम यदि धर्मात्मा है, सत्य प्रतिज्ञ है, और त्रिलोकी में उनके बराबर कोई मुकाबला करने वाला योद्धा नहीं है, यदि ये बात सत्य है तो अब इस बाण से मेघनाद मारा जाएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ वो बाण जो है उन्होंने छोड़ दिया। सनसनाता हुआ वो बाण गया, और वो बाण जाते ही मेघनाथ के गले के अंदर लगा, और जो अच्छे अच्छे मुकुट पहना हुआ और कुंडल पहना हुआ जो उसका सिर था, वो सिर भाग वहां से एकदम कट करके दूर गिर गया। और जब मेघनाथ का सिर एकदम कट गया तो अब देवताओं की खुशी का कोई पारावार नहीं रहा, और उन्होंने खूब फूलों की वर्षा की, धुंधबिया बजाई, बहुत आनंदित हो गए। अरे मेघनाद मारा गया, जहर्ष शक्रु भगवान। इंद्र बड़ा खुश हुआ, देवता ऋषि मुनि आकाश में बहुत प्रसन्न हुए, आकाश एकदम निर्मल हो गया, पृथ्वी एकदम स्थिर हो गई। मेघनाद के मरने पर जितने प्राणी थे उन सब ने एक सुख की सांस ली। लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद के मर जाने के बाद फिर इधर बंदर सेना की तरफ से विजय के शंख बजाए गए। उस सिंहनाद से और शंखनाद से राम जी के पास खड़े हुए बंदर बड़े प्रसन्न हो गए, और क्या अब जो है ये जो शंखनाद हो रहा है ये हमारी सेना का हो रहा है, मेघनाद मारा गया है। राम जी वहीं से ही बड़े संतुष्ट हो गए। इतने में कई बंदर जाकर के राम जी के पास ये खबर पहुंचाए हैं, और इधर विभीषण वगैरह भी राम जी के पास पहुंच गए। लक्ष्मण जी गए, जाते उन्होंने राम जी के चरण छू करके प्रणाम किया, कहा कि महाराज आपकी कृपा से हमको विजय प्राप्त हुई है, ये रावण पुत्र आपकी कृपा से मारा गया है। भगवान ने लक्ष्मण जी को अपनी छाती से लगाया और उनका मस्तक सूंघा, और बड़े स्नेह के साथ में राम जी ने कहा, साधु लक्ष्मण तुष्टोस्मि, हे लक्ष्मण बड़ा प्रसन्न हुआ हूं मैं, तुमने बड़ा दुष्कर कर्म किया है, कोई आदमी ऐसा कर्म कर नहीं सकता है। मेघनाद के मरने पर ऐसा समझो कि अब लंका का युद्ध अपने लोग जीत गए हैं। 3 दिन और 3 रात बराबर तुम्हारा युद्ध चल रहा था, कहीं पर भी नींद तो तुम कहीं समय से नहीं ले रहे हो, तुम्हारी योद्धा भी रात भर जगे। अहो रात्रि स्थिर वीर है कथनचित विनिपातित है, परिश्रम तो तुमको बहुत करना पड़ा, परंतु अच्छा हुआ ये मेघनाद मारा गया। अब रावण का पूरा बल खत्म हो गया, कुंभकर्ण भी मर गया, मेघनाद भी मर गया, अब तो भाई रावण जरूर युद्ध भूमि में आएगा, और अपने पुत्र शोक को हृदय में रखा हुआ लेकर आएगा। रावण का बहुत सा बल तो यूं ही नष्ट हो गया, अब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना हमारे लिए सुगम हो गया। इधर लंका के अंदर खबर गई कि मेघनाद को लक्ष्मण ने मार दिया, तो रावण ये सुनते ही मूर्छित हो गया। रावण को होश में लाने का बहुत प्रयत्न किया गया, बड़ा भारी उसने विलाप किया, अरे मेघनाद तुम्हारे कारण से ही तो मैंने युद्ध किया था, तुम्हारे बल के ऊपर ही मैंने सोचा कि मेघनाद है तो मेरा कौन क्या कर सकता है, तुम्हारे ऊपर गर्व करके मैंने सीता का हरण किया था, तुम्हारे ही कारण से मैंने हनुमान को कितने 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 कटु वचन कहकर शत्रु के हृदय में चुभने वाले वचन कहे थे, तुम्हारे ही कारण से मैंने यहाँ किसी की हित की बात नहीं मानी कि मेघनाद जीवित है मेरा कौन क्या कर लेगा। लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि युद्ध न हो, लेकिन तुम्हारे बल के ऊपर मैंने युद्ध चालू किया। मेघनाद तुम चले गए, मैं अनुमान लगाता हूँ आज आकाश में देवता लोग बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, ऋषि महर्षि ये सब के सब बहुत प्रसन्न होते होंगे, क्योंकि तुम्हारे ही कारण से मैंने इन देवताओं को अनेक प्रकार से विजय के इनको विजय प्राप्त नहीं करने दी, और तुमने इंद्र को कैद खाने में डाला था, वो लोग आज कितने निर्भय होकर के नाच रहे होंगे। बेटा पुत्र के मर जाने के बाद पिता के मन में कितना कष्ट होता है इस बात का तुमको ज्ञान नहीं है। बहुत विलाप किया उसने, और विलाप करने लगा रावण, क्रोध भी आता है विलाप भी करता है, और जोर जोर से बोलता है राक्षसान सर्वान निनाशी शूराहवे, अरे देखो तुम सारे के सारे राक्षस देखते क्या हो, मेरा भाई मर गया मेरा बेटा मर गया, और तुम लोग यहाँ मेरे पास खड़े हो, या तो तुम स्वयं ही मर जाओ या जाकर बंदरों के बीच में तो युद्ध करो, मरो या मारो, पर यहाँ से तो निकलो, तुम लोग क्या ऐसे ही बैठे हुए हो, ऐसे वो बोलता है। और विचार किया कि वह राम की सेना में कोई भी नहीं मरा, न हनुमान मरा न सुग्रीव मरा, उल्टे वो हम ही हमको मारते, और तो और ये विभीषण भी नहीं मारा गया, तो एक काम तो करूं मैं जाकर के अभी सीता को मारता हूं। वो तलवार लेकर के और बड़े क्रोध होकर के अशोक वाटिका की तरफ दौड़ रहा था। राक्षसी मध्य का सीता भय शोक कुला भवत, रावण जो है हाथ में तलवार लेकर अशोक वाटिका में पहुंचा। सीता जी देखे कि बड़ा क्रोध होकर ये तलवार लेकर आया है, तो सीता जी बड़ी भयभीत हुई। इतने में ही पीछे से उसका मंत्री आया दौड़े दौड़े, सुपार्श्व उसका नाम था। आते ही उसने रावण को अपने भुजा में ले लिया, महाराज ये क्या काम करते हो, ये कायरता का काम है, सीता को मारने चले हो, ये अच्छी बात नहीं है। ननु नाम दशक ग्रीव है साक्षात वैष्णवानुजय, आप तो कुबेर के छोटे भाई हो, कुबेर को परास्त किया, इंद्र को परास्त किया, और कितने आप वेद विद्या के जानकार बड़े विद्वान पुरुष हैं, आप सदा अपने कर्म में लगे रहने वाले अनेक गुणों से संपन्न हैं, लेकिन जाकर एक स्त्री को मारोगे, संसार में क्या बात। अरे जिस स्त्री के लिए आपने इतना बड़ा युद्ध किया उस स्त्री को आप मारोगे, यदि मारना ही था तो पंचवटी में मार देते, अब मारोगे तो आप कायर कहलाओगे, पंचवटी में मारते तो कायर नहीं कहलाते, क्योंकि वहां आप ये कह सकते थे कि मेरे भाई मेरे बहन को मेरे बहन के नाक कान काटे तो मैंने इनकी पत्नी का सिर काट दिया, काटने में तो मैं पीछे क्यों रहूं, उस समय तो बात अलग थी। युद्ध छेड़ दिया गया जिसके पीछे जिसकी प्राप्ति के लिए आपने इतना प्रयत्न किया, और जो है अब आपने युद्ध छेड़ दिया और अब जाकर के आप स्त्री को मारोगे, कोई आपके पक्ष में नहीं रहेगा, अस्मा भी सही तो युद्ध है, अब क्या आप इतनी चिंता करते हो, आपका पौरुष तो बाकी है, आप एक काम कीजिए राम को युद्ध में मारिए, मारना ही है तो राम को मारने के बाद आप सीता को कहो कि बोलो सीते क्या चाहती हो, सीता अपने आप ही रास्ते पर आ जाएगी, सीता को प्राप्त कर लोगे, फिर सीता जाएगी कहां, इसलिए राम के साथ में युद्ध करो। अब रावण को जबरदस्ती ले जाता है, रावण सीता की तरफ घूरता है और वो उधर ले जाते अशोक वाटिका के बाहर ले गया और वो अपने महल में आ गया। रावण अपने मंत्रियों के बीच में, मित्रों के बीच में बैठा हुआ है और गृहम जगामाशु सुचा विमूढ़धि, वो सोच नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कभी तो मित्रों के बीच में बैठता है, कभी सभा में जाता है, फिर सभा में उठ के आता है तो मित्रों के बीच में जाके बैठता है, कहता है मुझे क्या करना चाहिए, कोई मुझे सलाह दो। तो वो सलाह में यही कहते हैं कि महाराज युद्ध तो अब चालू ही हो गया, जिस युद्ध के लिए आपके भाई आपके पुत्र आपके योद्धा मारे गए, अब उस युद्ध को तो चालू ही रखिए। राक्षसों के बीच में उसने बहुत विचार किया और कहा कि क्या करें कि महाराज चलिए अब युद्ध हो गया तो हो गया, एक बात तो होने की है, या तो मरेंगे या मारेंगे, हो गया सब युद्ध चालू हो गया, चलो चलो। थोड़े से एक राक्षस थे, उन राक्षसों को लेकर के और रावण ढवाना हुआ। जिस प्रकार से आग के अंदर पतंगे पतंगों के साथ में आते हैं और गिर जाते हैं, इसी प्रकार से रावण के साथ राक्षस लोग आए और राम रूपी बाण अग्नि के अंदर वे सब के सब मरने लगे। तो जब उसकी सेना जाते ही धराशायी हो गई तो रावण का हृदय कांप गया और इधर राम जी ने रावण के हृदय में थोड़े तीखे बाण छोड़े, उससे घायल कायल भी हो गया, वो लंका में जाकर बैठ गया। इधर राम जी महाराज ने और भी वहां पर जो राक्षसी सेना थी सबको भगा दिया। रावणो मारुतेश्चैव शीघ्रम सुक्रांतिकम् ययौ। इधर क्या हुआ कि राम जी के और हनुमान जी के बहुत से पराक्रम देख करके और रावण घबरा गया। घबरा करके राक्षसों के जो गुरु है शुक्राचार्य जी महाराज, उन शुक्राचार्य जी के घर पर गया और वहां जाकर उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़े, हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूं, आप कोई उपाय बताओ, आप हमारे राक्षसों के गुरु हैं और राक्षसों पर बड़ा भयंकर कष्ट आया है, हमारी राक्षसी सेना सब नष्ट हो गई है, राम ने हमारी सेना के किसी भी श्रेष्ठ पुरुष को जीवित नहीं छोड़ा है, ऐसे दुख के अंदर आप ही हमारी सहायता कर सकते हो, आप जैसे गुरु के रहते हुए ये त्रिलोक जयी रावण आज बहुत दुख अवस्था में पड़ा है, पराजय को प्राप्त हो रहा है, महाराज कुछ उपाय करो, मैं बहुत घबरा गया हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि रावण मनुष्य को अंतिम श्वास तक विजय होने के लिए प्रयास करना चाहिए। कि क्या प्रयास करो महाराज, तुम यज्ञ करो, एकांत में यज्ञ करो और इस यज्ञ का किसी को पता भी न चले, और यदि मेरे बताए हुए मंत्र के अनुसार तुम यज्ञ कर लोगे और उसमें कोई विघ्न नहीं होगा तो उस यज्ञ के अंदर से एक दिव्य अग्नि प्रकट होगी, उस अग्नि के अंदर से एक विशाल रथ प्रकट होगा, श्रेष्ठ घोड़े पैदा होंगे, दिव्य बाण पैदा होंगे, तुणीर पैदा होंगे और उनको लेकर के तुम अकेले ही लड़ोगे तो किसी का भी बाण उस पर लग ही नहीं सकेगा, ऐसा दिव्य रथ है, तुम्हारे पर तो बाण क्या लगेगा और रथ पर भी बाण नहीं लग सकता, उन घोड़े पर बाण नहीं लग सकता, क्योंकि ये मंत्र से पैदा होंगे, अनुष्ठान से पैदा होंगे ना, इसलिए अब जाओ गुप्त जगह पर जाकर जो है तुम ये यज्ञ करना, कोई न देख सके। रावण ने कहा ठीक है महाराज। रावण अपने महल में आया, राक्षसों से कहा कि राक्षसों लंका के सब दरवाजे बंद कर दो, परकोटों के ऊपर तुम जितने राक्षस खड़े हो जाओ, कोई परकोटा लांग करने आए, और आकाश की तरफ भी तुम लगे कोई आकाश से न आ जाए, और मेरे महल के चारों तरफ कई चक्र के अंदर सेना खड़ी कर दो, मेरे महल में कोई न आ जाए, सब प्रकार की रक्षा करके मेरे महल के अंदर बीचों बीच एक गुफा बनाओ और उस गुफा के अंदर हम यज्ञ करेंगे, महल के अंदर चारों तरफ से महल भी सुरक्षित, और राक्षस लोग सुरक्षा कर रहे हैं। अब उसने जाकर के वहां यज्ञ करना चालू किया, मौन होकर के गुफा में बैठ गया अकेला, और जो गुरुजी ने मंत्र बजाए उन मंत्रों के अनुसार स्वाहा करने लगा। स्वाहा, जब यज्ञ किया जाने लगा तो उसमें से धुआं निकला यूं, अब वो धुआं निकले तो महल के अंदर के जालदानों से ऊपर यूं धुआं उठने लगा। उस धुएं को देख करके और विभीषण जी को आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है, रावण के महल के अंदर धुआं पैदा हो रहा है। राम जी को दिखाया कि देखो महाराज, मैं जानता हूं कि यज्ञशाला कहां है, परंतु यज्ञशाला में यज्ञ होता तो अलग बात थी, रावण के महल के अंदर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है कि हम लोग इतनी दूर से वो धुआं देख रहे हैं। हे राम, बहुत दिव्य हवन हो रहा होगा, जैसे मेघनाद हवन के लिए गया लेकिन उसका यज्ञ नष्ट कर दिया, ऐसे इसका यज्ञ भी नष्ट करना होगा। यदि ये यज्ञ नष्ट नहीं होगा तो मेघनाद से भी विलक्षण यज्ञ होगा, उससे भी विलक्षण यज्ञ होगा। जल्दी करो, श्रेष्ठ बंदरों को वहां भेजो और इस यज्ञ को नष्ट कराओ। राम जी ने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव तुम्हारे यहां कौन कौन श्रेष्ठ है? हमारे यहां अंगद बैठा, हनुमान जी रहे, नल रहे, नील रहे, और ऐसे ऐसे और असंख्य वीर है कि भेजो अभी इनको, जल्दी भेजो। लेकिन विभीषण तुम नहीं जाओगे, लक्ष्मण को भी नहीं भेजेंगे, इनको नहीं भेजेंगे। क्यों महाराज? के नहीं, जो सेना में बहुत प्रमुख होते हैं उनको नहीं भेजना चाहिए, कदाचित वो कोई शर्त मांग ले तो मुश्किल हो जाए ना। वो कहेंगे सीता को तो हम रखेंगे और जो है तुम लक्ष्मण को ले जाना चाहते हो तो ये बात है, अपने क्या करें, अपने तो जैसे सीता है वैसी लक्ष्मण है वैसी विभीषण है, इनको मत भेजो। दूसरे बंदरों को भेजा, हनुमान जी वगैरह को भेजा, 10 करोड़ बंदर वहां से रवाना हुए। 10 करोड़ बंदर गए, परकोटों के ऊपर रहने वाले राक्षस राक्षसों को दी थप्पड़, दिया धक्का, खोचे शस्त्र, मारना चालू किया, फिर अंदर चले गए। अंदर गए अब रावण के महल के अंदर प्रवेश का रास्ता नहीं मिल रहा था, तब वहां पर विभीषण की पत्नी अपने मकान के सामने खड़ी थी, उसने इशारा कर दिया इधर से जाकर के इधर मुड़ जाओ, ऐसे ऐसा उसने हस्त संज्ञा हाथ से इशारा कर दिया, मुंह से बोले तो ठीक नहीं है, हाथ से यूं इशारा कर दिया। बस अब क्या था, बंदरों को इशारा मिल गया। बंदरों ने देखा कि क्या करेंगे, छत के ऊपर चलो। छत के ऊपर गए और बंदर धम 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 करने लगे तो छत तोड़ दी, और छत तोड़ करके उसके अंदर आए। अंदर आकर के फिर गुफा के अंदर चले गए। चूर्णयित्वा महासत्व प्रविवेशा महागुहा, गुहा जो है उसके गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर गए, रावण आंख बंद किया हुआ बस मंत्र पर मंत्र डाल रहा है, आहुति डाल रहा है मंत्रों से। अंगद जी ने कहा कि अरे बंदरों आओ जल्दी, इसका यज्ञ नष्ट करो। अब नष्ट यज्ञ करने के लिए, यज्ञ नष्ट करने के लिए उन्होंने जो है होम के अंदर श्रुआ वगैरह थी वो रावण से छीन ली, पात्र फेंक दिए, रावण के मुक्के मारे, लात मारे, और रावण को जो है कोई दांत से काटे, कोई नक से बिदारे, रावण फिर भी ऐसा मजबूत ऐसा बैठा ही रहा वहां। लात मारे तो लात खाता रहे, और उसका गला पकड़ तो ऐसा बोल बल लगा के बैठ गया तो वो हिले भी नहीं। तो न जहू रावणो ध्यानम, रावण भी अपना ध्यान छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसके अंदर जीतने की इच्छा है। देखो यहां पर रावण ने अपना ध्यान नहीं छोड़ा, इससे देखिए कि एक लौकिक काम के लिए शत्रु को जीतने के लिए ऐसा वो मलिन यज्ञ कर रहा है, उसमें भी वो इतना सावधान है। वो कितनी उसके ऊपर आफत आ रही, उसके बाल पकड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके मुक्का मार रहे हैं, दांत जो है उसके गड़ा रहे हैं, काष्ठों से मार रहे हैं, फिर भी वो हिल नहीं रहा है। अंगद जी ने देखा कि ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं। अंगद जी शेष मंदिरों को तो वहीं रखे और पताल के अंदर से वापस महल के अंदर गए। कहा है मंदोदरी, कहाँ है मंदोदरी, कहाँ है, जाकर मंदोदरी को पकड़ लिया। मंदोदरी को पकड़ के उसकी चोटी पकड़ करके और गुफा में लेके आए। गुफा में ला करके और रावण के सामने उस मंदोदरी को जो है बुरी तरह से परेशान करने लगे। उसके कपड़े नहीं, कपड़े फाड़ते हैं, उसके बाल बाल पकड़ के खींचते हैं, ऐसे उसके हार वगैरह उसको पकड़ के तोड़ते हैं, बिखेरते हैं, ऐसे ऐसे वो करने लगे। जब वो बहुत ज्यादा दुखी करने लगे तब जो है मंदोदरी बड़ी दुखी हो गई। और भी दूसरे बंदर थे, उन्होंने देवताओं की कन्या थी, गंधर्वों की कन्या थी, उनको लाला करके और वे भी उसी उन सब को तंग करने लगे। बंदर लोग, मंदोदरी जोर से चिल्लाती है कि अरे रावण क्या करते हो, गृहस्थ का यज्ञ असली यज्ञ है, उस यज्ञ को तो तुम भूल गए और ये कौन सा दूसरा यज्ञ चालू करते हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी के चोटी पकड़ी जा रही है, उसके बाल नोचे जा रहे हैं, उसके कपड़े उसके ऊपर यूं बंदर लोग अपने नाखून गड़ो गड़ो करके फाड़े जा रहे हैं और धक्का दिया जा रहा है, और तुम यहां पर बैठे यज्ञ करते हो। ये यज्ञ है, गृहस्थ का सबसे बड़ा यज्ञ होता है गृहस्थ का पालन करना, गृहस्थ धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करना, स्त्रियों की मर्यादाओं की रक्षा करना। आज स्त्री का तो इतना अपमान हो रहा है और तुमको यज्ञ दिखाई दे रहा है। भार्या तवैव पुरुत है किम जुहोषी, तुम्हारे सामने भार्याओं की ये दशा और तुम यज्ञ करते हो, काय का यज्ञ, लज्जा नहीं आती। अरे क्या करें, आज मेघनाद मर गया तब ये दशा हो रही है। बेटा मेघनाद, तुझे पता नहीं तेरे मरने के बाद तेरी माँ की ये दशा बंदर लोग करेंगे। तेरे जीते जी ऐसा कभी दुख हमारे सामने नहीं आया, तू रहता तो भी ये दुख नहीं आता। भार्या लज्जा से संत्यक्ता भर्त्रा में जीविताशया, मेरे पति तो आज चाहे स्त्री की इज्जत भाड़ में जाए, चाहे कुल की मर्यादा कहीं राख में मिले, उसको तो केवल अपने युद्ध में जीतने की इच्छा के अलावा दूसरी कोई चीज दिखती नहीं है। ऐसे वो कठोर वचन बोलने लगी। तब रावण के मन में बड़ा क्रोध आया और उसने एकदम तलवार ले ली। तलवार गई, मंदोदरी तुम बिल्कुल क्रोध मत करो, अब देखो मेरा बल, ऐसा कहके बंदरों के पीछे दौड़ा। और बंदरों ने कहा कि बस बस बस, हमको तो यही करना था रावण जी, आपका यज्ञ ही हमको हटाना था, यज्ञ से हमने आपको हटा दिया। सब बंदर हो करते 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 चले गए और जाकर के राम जी के पास में बैठ गए। अब इधर रावण है वो उपदेश देता है मंदोदरी को कि सुनो मंदोदरी। मंदोदरी रोती जा रही है। रावण कहता है कि देखो देवी, ये सारा संसार अपने अपने भाग्य के अधीन चलता है। जिस व्यक्ति के सामने जो संसार आया है वो उसके भाग्य से आया है। तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि देखो मेरा कितना अपमान हो गया, ये अपमान तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। ये सुख दुख आदि जितने वातावरण है ये भाग्य से बनते हैं। मनुष्य जब तक जीता है तब तक अपनी क्या क्या परिस्थिति नहीं देखता है। कभी कभी आदमी सोचता है कि ओ मैं क्या था, मैं बाजार में चलता था तो लोग खड़े हो जाते थे अपने बैठे और सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब बोलते थे। आज देखो वही व्यक्ति हमको देखकर मुंह फेर लेते हैं, कुछ नहीं दिवाला निकल गया। ये सब भाग्य के अधीन दिन देखने पड़ते हैं। एक व्यक्ति ने सुनाया कि मैं बंबई के अंदर एक कपड़े की गांठ ले ले करके और सेठों के वहां जाता था कि साहब ये गांठ लेके आया हूं ये लेके आया हूं, कंधे पर ढोडो करके जाता था, उनसे समय मांगता था किस समय आऊं। वो कहते हैं इस समय आओ भाई, फिर फोन आ जाता कि इस समय मत आना कल आना। अच्छी बात है, यूं ले जाता उनको दिखाता था। आज ये परिस्थिति है कि वो मेरे से एक महीने से समय लेते हैं, एक महीने बाद समय देता हूं, समय नहीं मिलता। वही आदमी वही मैं हूं और वही वो है। मुझे माल उधार देने के अंदर 10 प्रकार की बातें सुनाते थे कि भाई देखो हम माल देते तो हैं पर ये बात है, ये है, वो है, कितनी बातें सुनाते थे। और अब हमको भी बोलते हैं कि जी आपके एक्सपोर्ट के अंदर 10% 20% जरा हमको भी आप साथ में कर लो। वही हमारी गर्ज करने लग गए। ये तो वातावरण है भाग्य का। तद शोकम विशालाक्षी ज्ञानम आलम्ब्य निश्चितम। ऐसे मौके पर हे मंदोदरी जी, मनुष्य को शोक का त्याग करके ज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि शोक होता है ये किसी परिस्थिति से पैदा नहीं होता है। अब देखो आज रावण ज्ञान दे रहा है, वो इसे ज्ञान इतना अच्छा प्रसंग है, ये बहुत मन लगा के सुनिएगा। मंदोदरी को बोलता है कि देखो मंदोदरी, जीवन में कोई घटना घटती है वो शोक का कारण नहीं है। तुम्हारा पुत्र मर गया, मेघनाद मर गया, शोक हो गया, ये कारण नहीं है। तो शोक अज्ञान से पैदा होता है, घटनाओं से पैदा नहीं होता है। अज्ञान प्रभव शोक है, और शोक से सबसे बड़ा झटका कहां लगता है? शोक पैदा होने पर जो हमारी विचार शक्ति है वो विचार शक्ति दब जाती है। विचार शक्ति पर शोक का प्रभाव पड़ता है। तो ये अज्ञान से शोक पैदा होता है। तो सबसे बड़ा अज्ञान क्या चीज है? सबसे बड़ा अज्ञान है कि शरीर मैं हूं और वस्तु मेरी है। शरीर मैं हूं और वस्तु मेरी है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान से शोक पैदा होता है, और शोक पैदा होकर के शरीर और आत्मा अलग अलग है, इस विवेक को वो शोक दबा देता है। देखो ये यहां पर मशीनें लगी हुई है, यहां लाल 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 जगह जगह, ये अग्निशमन मशीन है। यदि कहीं आग पैदा हो जाए तो ये सीधे जाकर के इसमें से एक पाउडर सा निकलता है, गैस सी निकलती है, गैस निकलते ही सीधे उस अग्नि को दबा देती है, उसी समय अग्नि शांत हो जाती है, उसी समय। ऐसे ही जो ये शोक है, ये शोक थोड़ा सा भी हमारे अंदर विवेक है कि शरीर आत्मा अलग अलग है, वो एकदम उसको दबा देता है। ये इसलिए शरीर को मैं और मेरा नहीं मानना चाहिए। और शरीर को जब मैं मानोगे तो उसके बाद आप संसार में पुत्र है, स्त्री है, मकान है, धन है, इनके साथ संबंध करोगे ही करोगे, अनिवार्य है। ये सेठ जी कहते थे कि मोट खाओगे तो प्यास लगेगी ही, मोट खाएंगे तो प्यास लगेगी। ऐसे ही शरीर को मैं मानोगे तो किसी न किसी को मेरा मानना ही पड़ेगा, जो शरीर से काम आने वाली चीज है। और जब आपने संसार से संबंध कर लिया, तब कहीं तो हर्ष होगा, कहीं शोक होगा, कहीं मोह होगा, कहीं क्रोध होगा, कहीं लोभ होगा, कहीं मोह होगा, कहीं स्प्रिया होगी। ये सब अज्ञान का प्रभाव, ये परिवार है, ये सब एक साथ वहां इकट्ठा हो जाएगा। अब यदि यहां आपकी माँ आई हुई है तो बच्चा भी आपके साथ ही आएगा, माँ का बच्चा तो माँ के पास ही रहेगा। ऐसे ही ये अज्ञान के बच्चे हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो उसके साथ ही रहेंगे। उस समय ये बात ध्यान में नहीं आती है। इसलिए मंदोदरी, आदमी को थोड़ी थोड़ी देर में विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं। आत्मा, आत्मा तू केवलम शुद्ध है, आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। कितना ही शोक में चले जाओ, दुख में चले जाओ, जो ही आदमी आत्मा पर विचार करे शुद्ध है। देखो भाई, आप यदि कहीं जा रहे हो और आप पर किसी ने पानी छिड़क दिया, होली का समय किसने रंग छिड़क दिया और आपके जेब के अंदर 500 का नोट है वो भी गीला हो गया, तो गीला हो जाने पर भी और उसमें रंग का छिड़काव हो जाने पर भी यदि उसके बाद उसको सुखा दोगे तो वो 500 का नोट 500 में ही चलेगा। कहीं फट भी गया और उसको आपने ठीक ढंग से चेप दिया तो 500 का नोट 500 में ही चलेगा। ऐसे ही आत्मा है, वो जब भी आप इसकी शुद्धि पर विचार करोगे उसी समय में इसकी शुद्धि नजर आ जाएगी, लेकिन आप तो इसके ऊपर विचार ही नहीं करते ना, कभी समय नहीं लगाते कि अपनी आत्मा में कैसी निर्विकारता है। सेठ जी ने लिखा है, सुबह जल्दी उठो, जिस समय सब सोए हुए रहते हो उस समय उठ करके नींद में से समय निकालो, नींद में से समय निकाल करके और हाथ मुंह वगैरह धो करके शुद्ध ताजे हो करके उस समय आत्म तत्व पर विचार करो। एकदम ये नींद किसको आई थी? ये बुद्धि को आई थी। जगता कौन है कि बुद्धि? ये बुद्धि, बुद्धि की अवस्था जागृत होती है, ये अवस्था बुद्धि की है, जागृत अवस्था आत्मा की नहीं है। और स्वप्न किसको कि ये बुद्धि की अवस्था, और सुषुप्ति की ये भी बुद्धि की अवस्था, ये सब बुद्धि की अवस्था है और आत्मा इन सब का दृष्टा है, सबसे अलग है। ऐसे अपनी आत्मा की दिव्यता के अंदर खो जाओ, उसके अंदर खो जाओ, आप जितना खोना हो जितनी देर बैठ सको उस समय कोई दूसरी बात मत करो, उस समय कोई दूसरी बात आने ही मत दो। ऐसा करने से आपको अपने घर का पता चलेगा, किसी को बता दिया जाए कि आपका घर है, लेकिन इस घर में किधर से प्रवेश करें, किधर से रास्ता है, कहाँ इसमें किचन है, कहाँ क्या बना हुआ है, यदि परिचय नहीं हो तो क्या फायदा। ऐसे ही अपनी आत्मा में रोज प्रवेश करना चाहिए, आत्मा के आनंद को थोड़ा लेना चाहिए। ऐसे करते करते थोड़े दिनों में हमारा स्वभाव बदल जाएगा सज्जनों, स्वभाव बदल जाएगा। स्वभाव बदलना क्या है? क्या कोई पहाड़ थोड़ा ही है? स्वभाव बदलेगा यही कि संसार का महत्व जो था वो तो हो जाएगा कम और अपने आप का आत्मा का महत्व जाएगा ज्यादा। बस उसमें इतनी सावधानी रखना कि मैं रोज ऐसी अपनी आत्मा के विषय में विचार करता हूं और दूसरे लोग नहीं करते, ये यूं ही है, बस ये ख्याल नहीं आना चाहिए। इतना सा जरूर सावधान रहना भाई, दूसरे की दूसरे जाने। आप लोग व्यापार करते हो उस समय आप ये थोड़ी सोचते हो कि दूसरे के कितना धन हुआ, कि दूसरे को कितना मुनाफा हुआ, ये बिल्कुल नहीं देखते। आप तो अपना ही देखते हो कि भाई हमारे कितना बैलेंस हुआ, बस दूसरे की तरफ नहीं देखते। ऐसे ही अपने को तो आपकी तरफ ही देखना, हमारा अपना आत्म तत्व में कितना आनंद का अनुभव हुआ, दूसरे की तरफ बिल्कुल विचार मत करना। बस ये एक स्टेज है खास, मैं तो देखो ऐसा करता हूं दूसरे नहीं करते, ये इतना सा भाव न आए और ऐसा विचार करके थोड़ा उसमें स्थित होने लग जाए तो बहुत लाभ है। महाराज जी तो कहा करते थे कि आप कोई काम करते 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 एक मिनट दो मिनट एक बार अपने में स्थित हो जाओ, चुप हो जाओ। वो चुप होना स्थित होना एक ही बात है, ये मामूली बात नहीं है। ये भागवत के अंदर स्वयं भगवान ने उद्धव जी को एकादश में कही है, तूष्णिम भवेत। तूष्णिम बोलते हैं चुप, चुप हो जाओ। तूष्णिम भवेत निज सुखानुभव है, और अपना जो आत्मिक आनंद है उस आनंद में आप डूब जाओ, उस आनंद को ले। जितना आपको उस आनंद में रस मिलेगा ना, उतना ये बाहर का आनंद आपका फीका पड़ जाएगा। देखो रावण बोलता हो चाहे कोई बोलता हो, बात तो उसकी बड़ी अच्छी है। आनंद रूपो ज्ञानात्मा सर्व भाव विवर्जित है, वो आनंद रूप आत्मा का अनुभव होता है, वो आनंद वो किसी और भाव वाला नहीं होता है। कि मैं गृहस्थ का सुख ले रहा हूं, कि मैं धन का सुख ले रहा हूं, कि मैं मान का सुख ले रहा हूं, ये कोई उसमें नहीं होता। एवं ज्ञात्वा स्वम आत्मानव, ऐसे अपने आत्मा को पहचान करके हे मंदोदरी शोक का त्याग करो। करने की बात ही नहीं, आगे तो फिर शोक पैदा ही नहीं होगा, शोक पैदा ही नहीं हो सकता। अपनी आत्मा का आनंद का अनुभव हो जाए तो कैसे शोक पैदा होगा। सज्जनों अनुमान लगाओ कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में गए और आपके जेब में 10,000 रुपए थे, वो 10,000 रुपए की जेब कट गई, तो क्या जेब कट जाने पर आपके अंदर जिनके पास खूब पैसा है वो सोचेंगे क्या कि मैं दरिद्री हो गया? वो कहेगा 10,000 रुपए क्या मायने रखते हैं जी, अब हम घर जाएंगे वहां लाखों करोड़ों रुपए हैं, बैंकों में लाखों करोड़ों रुपए हैं, हमारे क्या फर्क पड़ता है। तो 10,000 रुपए की जेब कट गई, दुख क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि आपके पास में उधर करोड़ों रुपया पड़ा है। ऐसे ही सज्जनों मैं जो है परब्रह्म परमात्मा का या अपनी आत्मा का जब आनंद मिल जाता है तो संसार के छोटे सुख फीके मालूम, क्या परवाह करेंगे। संसार का कोई थोड़ा अपमान हो गया, थोड़ा धन चला गया, कोई परिवार में मर गया, ये तो छोटी छोटी बातें होंगी, उसके सामने कोई खास बात नहीं होगी, इसलिए तुम्हारा शोक भी नहीं रहेगा। मैं अभी जाता हूं और मैं राम और लक्ष्मण को मार करके आता हूं, अथवा देखो मंदोदरी वो मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे तो मैं उनके धाम बैकुंठ में जाऊंगा और मैं उनको मार दूंगा तो मेरी विजय हो जाएगी। और एक बात है, यदि राम मुझे मार दे मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद, अब तुमको मैं एक बात कहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम सीधे अशोक वाटिका में जाना और तलवार लेकर के और सीता को मार देना, और सीता को मार करके और माया सार्धम त्वम प्रवेक्षसि पावकम, और मेरे साथ अग्नि में तुम प्रवेश करके और सती हो जाना, सीता को मार देना। फिर मैं तो भाई अब देखो पुरुष हूं, मैं जाकर के मारूंगा तो ठीक नहीं है, तुम तो स्त्री हो ना, तुम जाकर के मारो तो कोई बात नहीं। मंदोदरी ने कहा कि देखो कितनी बढ़िया आप ज्ञान की बात बोल रहे थे और इस सारे ज्ञान की बात पर आपने पानी फेर दिया। एक तरफ कहते हैं कि राम के बाणों से मरूंगा तो बैकुंठ में जाऊंगा और तुम पीछे से सीता को मार देना, क्या सीता राम से अलग है? सीता राम सीता है क्या? वो एक सामान्य स्त्री है, आपने अभी तक इनको समझा ही नहीं है। हे नाथ मैं आपको बताऊं कि राम कौन है, ये सीता कौन है। आप राम को कभी जीत ही नहीं सकते हैं, त्रिलोकी में राम को कोई नहीं जीत सकता है। मैं तो कहती हूं सारा संसार सब देवता असुर सब आपके पक्ष में आ जाए और राम के बंदर भी आपके पक्ष में आ जाए, सुग्रीवादी भी आपके पक्ष में आ जाए, एक अकेले खड़े रहे राम युद्ध में तो भी आप उनको जीत नहीं सकते हो। आप राम को पहचाने ही नहीं। आपने सुना ना कि पहले एक मत्स्या अवतार हुआ था, भगवान विष्णु मछली बने थे और मछली बनकर के उन्होंने हयग्रीव को मारा था। ये वही वैवस्वत मनु के अंदर अवतार लिए हुए मत्स्य भगवान इस समय राम बने हुए हैं। आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी जिसमें से अमृत निकला था, उस समुद्र मंथन के अमृत वेला में ये मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले कूर्म रूप से ये ही राम थे, कछुआ बने। कछुआ बनकर के उन्होंने अपने पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया। और आपने सुना होगा कि इस पृथ्वी को रसातल से अपने दांतों पर लाकर वराह भगवान ने स्थापित किया। वो वराह भगवान कौन थे? ये वराह भगवान ये ही थे। आपने सुना कि प्रह्लाद की रक्षा के लिए नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ये नृसिंह भगवान ये साक्षात भगवान ही थे। आपने ये सुना कि बलि राजा के पास में वामन रूप से गए वे भगवान त्रिविक्रम रूप बनाए, वो त्रिविक्रम वाले भगवान भी ये ही हैं। आपने ये सुना कि 21 बार क्षत्रियों का नाश करके ये पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दी, वो परशुराम जी महाराज वो ये ही हैं, ये ही। आपने ये सुना कि नहीं कि परशुराम जी महाराज भी इनके सामने आकर हाथ जोड़ गए और अपने अपराध के लिए इन्होंने क्षमा याचना की थी। ये वही भगवान विष्णु है जो इस समय में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपको मारने के लिए आए हैं, आपको संसार को आनंदित करने के लिए आए हैं। और उनकी भार्या का हरण करके आपने क्या ले लिया? सीता को प्राप्त किया तो सीता भी आपको कहां मिली? आपका कुल नष्ट हो गया, भाई नष्ट हो गया, बेटा नष्ट हो गया और अब आपकी भी मृत्यु की भी तैयारी है। आप छोड़िए इन सब बातों को, अभी भी मौका है। अंतिम श्वास तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि ये मेरी शरण में आ जाए, ये मेरी शरण में आ जाए। तो आप अभी भी एक काम कीजिए, आप सीता को बड़े सम्मान के साथ राम जी के पास जाइए और सीता को समर्पित कर दीजिए। वहीं आपको विभीषण जी मिलेंगे। विभीषण जी से कह देना, विभीषण ये लंका जाने और तुम जानो, अब मेरा तो कोई बेटा नहीं, कोई भाई नहीं, कोई मेरे कुल में बचा नहीं। अब मेरा जो मेरे पास मेरा करके यदि कोई है तो एक समय है, मृत्यु तक का समय है। बस उस समय में केवल राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम इसकी रट लगानी है मुझे। ये राज्य तुम जानो, राम महाराज राम जी महाराज से कह दो ये आपकी सीता है, किए कसूर को आप माफ कर दो, राम जी आपको बिल्कुल क्षमा कर देंगे। मंदोदरी चुप हो गई। रावण ने अब कहना चालू किया, मंदोदरी तुम ये बात बोलती हो, क्या मैं जानता नहीं हूं? मुझे सब पता है इन बातों का। मंदोदरी अब मेरा जीवन कितना है कितना नहीं पता नहीं, लेकिन आज तक मैंने किसी को बात नहीं सुनाई, वो तुमको सुना रहा हूं। ये जो युद्ध मैंने ठाना है वो मेरे राक्षस कुल का उद्धार करने के लिए ठाना है। शूर्पनखा ने आकर जब ये बताया कि राम ने 14,000 सैनिकों को एक बाण से मार दिया, अकेले ने मार दिया, उसके बाद से मेरी राम के अंदर प्रीति पैदा हुई। पर मैं जानता था कि ये प्रीति स्थिर रहने वाली नहीं है, क्योंकि युद्ध जनित प्रीति होती है वो स्थायी नहीं रहती, और प्रेम करता हुआ मैं उस समय जगत में अच्छा भी नहीं लगता। लोग मुझे बोलते राक्षस लोग कि आपके भाई बंधुओं को तो मार दिया और आप उसके शरण में चले गए, तो प्रजा के अंदर एक खराब भावना जाती है। और राम जी के शरण में जाने के बाद यदि मैं किसी प्रकार से जो है अपवाद का प्राप्त हूं तो लोग भी नरक में जाते हैं। इसलिए मैंने सबके उद्धार के लिए, पूरी लंका के उद्धार के लिए यही उचित समझा कि राम के साथ बैर किया जाए और अपने आप को और जो है कुल सहित राम के हवाले कर दिया जाए, राम के हाथों से ही हमारा मरना हो, हमारे कुल, हमारा राक्षस समुदाय, हमारे भाई, हमारे बेटा, ये सब राम के हाथों से मरे, सबका कल्याण हो जाए। मैं राम के हाथ से मरने पर स्वयं बैकुंठ में जाना चाहता हूं मंदोदरी, मैंने बहुत सोच समझ करके ये युद्ध किया है, मैं जानता हूं। जानामि राघवम विष्णु, राघव साक्षात भगवान विष्णु है। सीता जी को जानता हूं कि सीता जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मीम जानामि जानकीम, इसीलिए तो मैंने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा है, पवित्र वाटिका है। देखो मैंने सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा है कि हमारे सीता जी के पतिदेव वो वन में हैं, तो सीता जी को भी मुझे वन में ही रखना चाहिए, मैंने वन में रखा है। सीता जी का धर्म अपने पति के सेवा में पति के जैसे ही रहने का था, वो मैंने वैसा का वैसा उनका धर्म रखा है। रामेण निधनम प्राप्य, इसलिए मैंने देखा कि राम के द्वारा मैं मरूंगा तभी मेरा कल्याण होगा। राम के हाथ के स्पर्श से वो बाण छूटा हुआ और मेरे शरीर में लगेगा तो वो तो राम ही हुआ ना, वो बाण कोई राम से अलग होगा क्या? वो बाण मेरे शरीर में लगेगा और मैं मरूंगा, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। मैं अंदर ही अंदर बाली की कम सराहना नहीं करता हूं, मैं विराद की कम सराहना नहीं करता हूं, मैं और जितने राक्षस मरे कुंभकर्ण मरा इनकी कम सराहना नहीं करता हूं, मेघनाद मरा ये मेरे लिए बहुत आदरणीय है। राम के हाथों से मरे, साक्षात राम के हाथों से मरे। तो रामेण निधनम प्राप्य यास्यामि इति परम पदम, मैं परम पद को प्राप्त होऊंगा। और प्रिय तुम्हारे साथ आज मेरा ये सत्संग हो गया, सच पूछा जाए मंदोदरी मैंने भीतर से तुम्हारे साथ सबके साथ संबंध तोड़ दिया है। त्वाम विमुच्य, तुमको भी मैं छोड़ करके इस संसार से मर करके वैकुंठ में जाऊंगा। वो वैकुंठ ऐसी जगह है, परमानंदमय जगह है, जहां बड़े बड़े मुमुक्षु लोग कितनी कितनी साधना करते हैं। उस साधना में बात तो इतनी है ना कि वो भगवान के साथ संबंध करते हैं, यही तो बात है। और वो ध्यान से संबंध करते हैं, प्रेम से संबंध करते हैं, भक्ति से संबंध करते हैं। मंदोदरी मैंने मेरा बैर भाव से संबंध कर लिया, बैर भाव तो केवल मेरा दिखाने का था। मंदोदरी अब मैं जाऊंगा, राम के हाथों से मरूंगा, मेरे सारे पाप है वो मेरे धुब जाएंगे, मैं परम मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। मंदोदरी क्लेशादि पंचक तुरंग युतम भ्रमाढ़्यम दारात्म जाप्त धनबंधु जशाभियुक्तम और वा नलाभ निजरो समनंग जालम संसार सागरम अतीत्य हरिम ब्रजामी। ये संसार तो एक सागर है, इस सागर के अंदर ये पांच क्लेश होते हैं ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांच प्रकार के क्लेश हैं, ये समुद्र की तरंगे हैं। और भ्रमाढ़्यम, और भ्रम ही है, हम जगह जगह भ्रमित हो जाते हैं, ये भ्रम ही है, भौरे हैं, भौरे पानी में भौरे आते हैं। और स्त्री है, पुत्र है, शरीर है, धन है, भाई बंधु है, परिवार है, ये इस संसार रूपी सागर के मगरमच्छ हैं, ये खाते रहते हैं। और वान लाभ निजरोषम, और अपने अंदर जो बार बार क्रोध पैदा होता है, ये दावानल है, दावानल पानी में आग तो आती, कभी कभी समुद्र में भी आग आती है, सुनामी वगैरह क्या है, अंदर की ज्वालामुखी फूटती है। ऐसे ही औरवा न लाभ निज रोषम, निज रोषम माने अपने अंदर जो उठने वाला क्रोध है, ये दावानल के समान माना गया है, अपने अंदर का क्रोध दावानल। और अनंग जालम, और अनेक प्रकार की कामनाएं होती है, इनका समुद्र के अंदर जाल है, जाल। ऐसा ये संसार सागर है मंदोदरी, अब इस संसार रूपी सागर से बड़े सहज भाव से तर करके और अंत में मैं भगवान की शरण में जाऊंगा, निहाल हो जाऊंगा। मंदोदरी मेरा तो हर प्रकार से भला ही भला हुआ है, मैंने ये युद्ध छेड़ करके मेरी दृष्टि में कोई मैं भगवान से विमुख होने वाला काम नहीं किया है। अतः मंदोदरी अब मैं यहां से रवाना होता हूं। मंदोदरी ये मेरा तुम्हारा और हमारा अंतिम मिलन है, अब मुझे तुम बड़े प्रेम से राम के पास जाने दो। मंदोदरी ने रावण को बड़े सम्मान के साथ रथ तक विदा किया और कहा हे प्राणनाथ कि मंदोदरी बस अब भगवान के शरण में जा रहा हूं कहकर रावण रथ में चढ़ गया। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम